हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तब अमन उसे घूर कर रह गया। उसने कहा, तुम मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हो, तुम मेरे बिजनेस में राइवल थे और मैं तुम्हें बिजनेस दुश्मन समझता था। मैं बिजनेस की दुश्मनी को घर तक नहीं लाया करता, लेकिन तुमने आज इस तरह से मेरी बीवी को मेरी ही आंखों के सामने घूर कर, उसके बारे में उल्टा सीधा सोचकर पर्सनल दुश्मनी की शुरुआत कर दी है। याद रखना, अमन सिंह राठौर से दुश्मनी तुम्हें कितनी महंगी पड़ेगी। जैसे ही अमन ने अक्षत खुराना से ये सारी बात कही, अक्षत उसे घूर कर रह गया। उसने कहा, चलो कम से कम तुमने हमसे किसी तरह का रिश्ता तो रखा, और वैसे भी तुम्हारी बीवी को घूरने के लिए मैं एक बार तो क्या 100 बार मरने के लिए तैयार हूँ, और हर बार एक अलग तरह की दुश्मनी भी करने को तैयार हूँ। और तभी अचानक अक्षत खुराना अमन के बेहद करीब आ गया। उसने अमन के कान के पास जाकर कहा, तू जानता है मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मैं यहाँ तुझे सीधा सीधा ओपन चैलेंज देने आया हूँ। ठीक 15 दिनों के अंदर अंदर मैं तेरी बीवी को तुझसे छीन लूँगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। अगर तुझमें हिम्मत है तो रोक कर दिखा। ऐसा कहकर अक्षत खुराना मुस्कुराया और जल्दी ही वहाँ से चला गया। जैसे ही अमन ने अक्षत की बात सुनी, वो हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगा, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन तारा के खिलाफ किसी की भी इस तरह की बातें वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और तभी उसने पूरी तेज आवाज में जोर लगाकर बोला, अक्षत खुराना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बातें करने की? ऐसा कहकर अमन आगे बढ़ा और बिना सोचे समझे अक्षत के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। अक्षत, जो बाहर की ओर जा रहा था, अमन की आवाज सुनकर रुक गया। उसे नहीं सोचा था कि अमन इस तरह से सबके सामने उस पर हाथ उठा देगा। अक्षत की सबके सामने बेइज्जती हुई। उस वक्त वहां ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो अक्षत को ना जानता हो, क्योंकि अमन के बाद अगर उस शहर का कोई बिजनेसमैन नंबर 1 की रेस में आता था तो वो सिर्फ और सिर्फ अक्षत खुराना ही था। लेकिन अमन ने सबके सामने उस पर हाथ उठाकर इस बात की मुहर लगा दी कि अमन और अक्षत में अब कितनी भयानक दुश्मनी छिड़ चुकी थी। जल्दी ही पार्टी में आए सभी लोग उन दोनों के खिलाफ गॉसिप करने लगे। तारा ने जैसे ही ये सब कुछ देखा, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई। तभी करिश्मा जी तारा के पास आकर खड़ी हो गई। तारा ने करिश्मा जी से कहा, मॉम, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आखिरकार ये आदमी कौन है और अमन सर ने उस पर हाथ क्यों उठाया? ऐसा क्या कहा होगा उसने अमन सर को? करिश्मा जी ने तारा का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो ये इंसानी दुनिया है, और इस इंसानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो वो है कॉम्पिटिशन। हर एक फील्ड में सबसे आगे निकलने का कॉम्पिटिशन। और तुम तो अमन को जानती ही हो। अमन इस शहर का ही नहीं, आसपास के काफ़ी सारे शहरों का इकलौता नंबर 1 बिजनेसमैन है, तो ज़रूर उसके काफ़ी सारे राइवल्स भी होंगे। बेटा, हम लोग इंसानों के बीच रहते हैं और इंसानों के बीच रहकर हमें इंसानों जैसी छोटी मोटी प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है। ये आम है, सो तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ओके, ऐसा कहकर करिश्मा जी हल्का सा मुस्कुराई। वहीं अमरेंद्र जी करिश्मा जी से आंखों ही आंखों में कुछ बात करने लगे, जिसे तारा ने देख लिया। मानो कुछ बड़ा होने वाला था। सभी को ये एक छोटा सा एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन तारा को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मानो ये आने वाले किसी बड़े खतरे की निशानी हो। वहीं मल्लिका और अमित बड़े ही ध्यान से सारी चीज़ देख रहे थे। जब अमित ने थोड़ा सा ध्यान लगाकर अक्षत खुराना की ओर देखा तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। अमित ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अक्षत खुराना इस तरह से अचानक इस पार्टी में आकर ऐसा हंगामा कर सकता है। अमित बचपन से ही किसी न किसी बहाने से अमन के साथ था, और उसे अच्छी तरह से पता था कि बिजनेस और इंसानी दुनिया में अमन के कितने राइवल हैं और कौन उसका किस तरह से दुश्मन है। इतना ही नहीं, कितने ही सारे दुश्मन तो अमित ने जानबूझकर अमन के सामने खड़े किए थे, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो अमन की नज़रों में महान बन जाया करता था। ऐसा अमन का भरोसा जीतने के लिए अमित ने कितनी ही बार किया था। लेकिन आज अक्षत खुराना को पार्टी में देखने के बाद अमित का दिल बहुत ही ज़्यादा नफरत और गुस्से से भर उठा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके गुरु, काली शक्तियों के महागुरु, ऐसा भी कोई कदम उठा लेंगे, और उसके लिए सच जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इसीलिए उसने देरी ना करते हुए जल्द से जल्द पार्टी से निकलकर अपने घर की ओर रवाना हो गया, क्योंकि एक ऐसा ज़रूरी काम था जो उसे अभी और इसी वक्त करना था। मल्लिका भी अमित को इस तरह से निकलते हुए देख चुकी थी। अमित को इतने गुस्से और नफरत से पार्टी से जाता हुआ देखकर मल्लिका की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था।
वो उसे पार्टी में जाना नहीं चाहती थी क्योंकि कितने ही दिनों के बाद उसे अमन को देखने का मौका मिल रहा था। वो अमन को दिलो जान से अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ उसे काली शक्तियों के मालिक अमित की भी चिंता सताने लगी थी। आखिरकार काली शक्तियों का मालिक अमित इस तरह से इस पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहा है? और कहीं ना कहीं मल्लिका को भी इस बात का शक होने लगा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उसे भी नहीं पता। अगर उसे इस बात के बारे में पता लगाना है तो उसे काली शक्तियों के मालिक अमित का पीछा करना ही होगा। ये सोचते हुए मल्लिका भी सबकी नजरों से बचते बचाते उस पार्टी से निकलकर सीधा अमित के पीछे पीछे जाने लगी और बहाना बनाकर आगे पीछे अमित के पीछे पीछे पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि आखिरकार ऐसा क्या था जो काली शक्तियों के मालिक अमित को पता चल गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ी और देर पार्टी में नहीं रह पाया और सीधा घर के लिए निकल चुका था। जैसे ही मल्लिका ने काली शक्तियों के मालिक अमित को इस तरह से जाते हुए देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई और जल्दी ही वो भी अमित के पीछे पीछे बिना किसी की नजरों में आए निकल गई। काली शक्तियों का मालिक अमित सीधा अपनी हवेली में पहुंचा। वहां जाकर उसने जादुई पानी में देखकर कुछ मंत्र पढ़कर उसकी ओर फूंकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसके गुरुजी की आत्मा उसके सामने मौजूद थी। जैसे ही काली शक्तियों के मालिक अमित ने अपने गुरुजी की आत्मा को अपनी आंखों के सामने देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया और जल्दी से उसने अपने गुरु की आत्मा को प्रणाम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके गुरु की आत्मा पहली बार इस तरह से उसके सामने आई थी। वो हमेशा उससे ही कुछ ना कुछ पूछा करता था और वो पानी में देख लिया करता था, लेकिन इस तरह से उसको गुरुजी की आत्मा उसकी आंखों के सामने नहीं आई थी तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसने कहा, गुरुजी आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और अक्षत खुराना वो अमन की पार्टी पर क्या कर रहा था और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षत को किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही भेजा है? बताइए गुरुजी, क्या मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो झूठ है या सच है? काली शक्तियों का मालिक अपने गुरु को देखकर उनसे कितने सारे सवाल करने लगा था।
उसका गुरु उसकी ओर देखकर हंसने लगा और कहा, मैंने जितना बेवकूफ सोचा था तो इतना बेवकूफ नहीं है। हाँ, अक्षत को मैंने ही भेजा है, तुझे क्या लगा? मैंने तुझे इतने सारे मौके दिए लेकिन तूने आज तक ना तो तिलस्मी पत्थर हासिल किया है और ना ही जिन महाराज अमन को हरा पाया है। इतना ही नहीं, तुम जिन महाराज अमन की शादी तक नहीं रोक पाए और अब देखो जिन्नातों का वंशज जो दुनिया में जन्म लेने वाला है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? एक तो उस बेवकूफ विक्रांत की वजह से जिन महाराज का बेटा अमरेंद्र यानी तेरा बाप मेरी कैद से बच गया। तुम जानते हो आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैं अमन के दादा जिन महाराज को अपने कदमों में देखना चाहता हूँ, लेकिन दिन पर दिन वो मुझसे और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है और अब जिन महाराज के वंशज के जन्म लेने के बाद उनकी शक्तियाँ कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी इस बात का अंदाज़ा भी है तुम्हें? जैसे ही काली शक्तियों के गुरु ने अमित को इस तरह से डांटा वो हैरान हो गया। उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे कि वो काली शक्तियों के गुरु को कुछ कह सके और तब उसने अपनी एक और कोशिश की और कहा, लेकिन गुरुजी आप देखिएगा, अक्षत खुराना से पहले मैं तिलस्मी पत्थर हासिल करूंगा। और शायद आप भूल रहे हैं, अमन से सीधे सीधे अक्षत ने दुश्मनी मोल ले ली है। और आपको क्या लगता है अमन अक्षत को जिंदा छोड़ेगा? नहीं, वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। ऊपर से अक्षत ने सीधे सीधे मेरी महफिल में अमन की बीवी को घूर कर देखा है, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें सोची हैं जिससे अमन को बहुत ही तेज गुस्सा आया था और उसने उस पर हाथ भी उठाया था। तब काली शक्तियों का महागुलु हंसने लगा और कहा, इसका मतलब मेरे भेजे हुए नए मोहरे ने आते ही अपना काम शुरू भी कर दिया। जैसे ही काली शक्तियों के गुरु ने ये कहा, अमित उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा और कहा, इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अक्षत खुराना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था अमन से दुश्मनी बढ़ाने के लिए? तभी काली शक्तियों का गुरु अमित से कहने लगा, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे जो करना है कर। अगर तू तिलस्मी पत्थर अक्षत से पहले हासिल कर पाया तो काली शक्तियों के महाशक्तिशाली रक्षक की उपाधि में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर तुमसे पहले अक्षत खुराना ने वो तिलस्मी पत्थर हासिल करके नए जिन महाराज अमन को हरा दिया और साथ ही साथ सफ़ेद जिन्नातों के वंशज का अंत कर दिया तो मैं उसे नया काली शक्तियों का महारक्षक घोषित कर दूंगा। जैसे ही अमित ने ये सुना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और तेज चिल्लाकर बोला, नहीं नहीं गुरुजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार आप सोच भी कैसे सकते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं अमन के बाप से, अमन के परिवार से, सफ़ेद जिन्नातों से मेरी कितनी गहरी दुश्मनी है। उनकी वजह से मैं अपना बचपन नहीं जी पाया, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से मेरी माँ मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। मैं किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं जीतने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। और काली शक्तियों का महारक्षक अगर कोई बनेगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ अमित। काली शक्तियों का मालिक अगर कोई बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अमित होगा। जैसे ही अमित ने अपने गुरु से ये कहा वो उसे देखता रह गया। काली शक्तियों का महागुरु अमित की ओर देखकर सोचने लगा, इतने मैंने तुम्हें मौके दिए हैं लेकिन अभी तक तो तुम कुछ कर नहीं पाए और अगर तुम अब वाकई काली शक्तियों के महारक्षक बनने की दौड़ में वाकई अपने आप को साबित कर पाते हो तो मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। तभी उसने सारी बातें काली शक्तियों के मालिक अमित से कहना शुरू कर दिया। अगर तुम वाकई काली शक्तियों के महारक्षक बनना चाहते हो तो जो कुछ भी हमने तुम्हें कहा है तुम्हें वो सब कुछ करना होगा, वो भी अक्षत से पहले पहले। ऐसा कहकर काली शक्तियों का महागुरु गायब हो गया और अमित गुस्से से भड़क उठा। तब तक मल्लिका, जो अमित के पीछे पीछे वहां पहुंची थी, वो काली शक्तियों के महागुरु और अमित की एक एक बात सुन चुकी थी और समझ चुकी थी कि अक्षत वहां क्या करने आया था। और कहीं न कहीं मल्लिका खुश होने लगी थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर अक्षत तारा को अमन की जिंदगी से अलग कर देगा तो उसके चांसेस अमन की जिंदगी में जाने के काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सोचते हुए वो अपना एक अलग ही प्लान बनाने लगी। वहीं दूसरी ओर अक्षत ने पूरी की पूरी पार्टी खराब कर दी थी। जल्दी ही सभी मेहमान एक एक करके वहां से चले गए। अमन तारा और अपने माता पिता को लेकर अपने बंगले में आ गया। अमन का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अक्षत क्या चाह रहा था। अमन के गुस्से की तपिश तारा, करिश्मा जी और अमरेंद्र जी अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे। घर आकर वो गुस्से से अपने हाल में टहलने लगा और अमरेंद्र जी अमन को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार अक्षत ने क्या किया था।